بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں، 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، ہے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ کہا، ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو اششت کرم ہے، تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجانی لوگوں میں سے نہ ہو جا۔ کہا، ہے رب، मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बुधवार है, जनवरी की 27, जमादी सानी की 13 और बहमन माह की 8 तारीख। एक घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम का आरंभ हम विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद आपको दैनिक कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा सुनवाया जाएगा। राजनैतिक चर्चा के उपरांत हम शौर्य गाथा नामक एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम पेश करेंगे, जिसके बाद आप सुनेंगे आजकल। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको ये बताते चलें कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। तो अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप ने परमाणु समझौते को लेकर अपना वादा पूरा नहीं किया है। तेहरान ने कहा है कि हम भारत, चीन और रूस से वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिम पर भरोसा नहीं करेंगे। भारतीय किसान संगठन ने दिल्ली हिंसा के लिए सरकार और असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। 26 जनवरी को लाल किले में धार्मिक झंडा फहराने वाले व्यक्ति का संबंध बीजेपी से निकला है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि यूरोप ने अपना वादा पूरा नहीं किया। राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी का कहना है कि अमेरिका और यूरोप की ओर से वचनों को पूरा करने की स्थिति में तेहरान भी परमाणु समझौते में वापसी के लिए तैयार है। राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कहा, इस समय कुछ ही देशों को छोड़कर दुनिया के अधिकांश देश अमेरिका से ये मांग कर रहे हैं कि वो परमाणु समझौते के बारे में अपने वचन पूरे करते हुए इसमें वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि जब वे अपने वचनों को पूरा करेंगे तो ईरान भी JCPOA से संबंधित अपने सारे वादे पूरे करेगा। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के विरुद्ध शत्रु का आर्थिक युद्ध विफल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस समय पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि शत्रु का ये दांव भी अपने अंतिम दिनों में है। उन्होंने इस्लामी क्रांति की 42वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहा कि इस वर्ष वे नहीं हैं जो पिछले कई वर्षों से ईरान को आर्थिक युद्ध के माध्यम से पराजित करना चाहते थे।
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान नागरिकों के स्वास्थ्य और राजनीतिक चिंताओं के कारण अमरीकी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसके बजाय अपने सहयोगी देशों और घरेलू वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा। रशिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि COVID-19 की रूसी वैक्सीन देश में इस्तेमाल भी की जाएगी और उसे यहाँ तैयार भी किया जाएगा। मास्को की अपनी यात्रा के दौरान जरीफ ने कहा कि हम चीन से वैक्सीन लेंगे और हम भारत से वैक्सीन लेंगे, हम इन सभी के संपर्क में हैं। ईरानी विदेश मंत्री का ये इंटरव्यू गुरुवार को प्रकाशित किया जाएगा। ایران اپنی ویکسین بھی تیار کر رہا ہے اور انسانوں پر اس کے ٹیسٹ کا پہلا چرن جاری ہے۔ جون کے مہینے تک ایرانی ویکسین کے تیار ہونے کی سمبھاونا ہے۔ تہران نے امریکی ویکسین فائزر اور ماڈرنا کو رد کر دیا، جسے یوروپ اور امریکہ کے سہیوگی پراتھمکتا دے رہے ہیں۔ ایران کی اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے حال ہی میں امریکی اور برٹش ویکسین کو غیر بھروسے مند بتاتے ہوئے پرتبندھت کر دیا ہے۔
پومپیا نے بائیڈن کو ایران پر دباؤ جاری رہنے کی نصیحت کی ہے۔ امریکہ کے پورو ودیش منتری نے اس دیش کے ورتمان راشٹرپتی کو یہ سجھاؤ دیا ہے کہ زائونی شاسن کے ساتھ انیہ عرب دیشوں کے سمبندھوں کو سامان بنانے کے لیے ایران پر دباؤ کو بڑھانا چاہیے۔ مائک پومپیو نے بدھوار کی صبح فاکس نیوز کو دیے ساکشاتکار میں پچھلے چار ورشوں کے دوران ایران کے ورودھ دباؤ کی نیتی کی پرشنسا کی۔ انہوں نے ٹرمپ کے کال میں اسرائیل کے ساتھ کچھ عرب دیشوں کے سمبندھ سامان کرانے کو ٹرمپ کے پرشاسن کی اپلبدھی بتایا۔ پومپیو کے انوسار عرب دیشوں اور اسرائیل کو نکٹ لانے کے لیے بائیڈن سرکار کو ایران کے ورودھ ادھک دباؤ بنانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شیتر میں ہماری نیتیوں کو لاگو کرنے کی راہ میں اسرائیل اور فلسطین کے مدعے کو بادھا نہیں بننے دیا جائے۔
راشٹرپتی کاریالے پرمکھ نے کہا ہے کہ اسرائیل میں نہ تو ایران کا مقابلہ کرنے کی کشمتا ہے اور نہ ہی ایران پر حملے کی کوئی یوجنا ہے۔ محمد وائزی نے ایران پر حملے پر آدھارت اسرائیل کے سینا پرمکھ کے بیان پر بدھوار کو کہا کہ ایران اور کھیتر کی جنتا زائونی شاسن کے ادھیکاریوں کی مانسکتا کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ منوویگیانک یدھ کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ راشٹرپتی کاریکال کے پرمکھ نے ایران کی شکتی کے بارے میں کہا کہ حال میں ایران کے سینیہ بلوں کی اور سے جو سینیہ ابھیاس کیے گئے ان سے ایران کی شکتی کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یدھ تو نہیں چاہتے لیکن اپنے دیش کی رکشا میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہیں۔ محمد وائزی نے کہا کہ جے سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی اور پرتبندھوں کو ہٹانے جیسے مدعے ایسے ہیں جن کا ورودھ اسرائیل، سعودی عرب اور کچھ شتر دیش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ پریاس ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔
امریکی ادھیکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے تیل نریات کے پریاس کو روکنے کے لیے وہ ایران کے 20 لاکھ بیرل تیل ضبط کرنے کے پریاس کر رہے ہیں۔ امریکی ادھیکاریوں کا دعویٰ ہے کہ ایرانی کروڈ آئل لائبیرین فلیگ والے جہاز میں تھا جو امریکہ کی اور بڑھ رہا تھا۔ امریکی نیائے وبھاگ نے اسے ضبط کرنے کا آدیش جاری کیا ہے۔ سوتروں کے مطابق یہ آدیش 20 جنوری کو ڈونالڈ ٹرمپ کے اتراادھیکاری جو بائیڈن کے ستہ سنبھالنے سے پہلے جاری کیا گیا تھا۔ امریکی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ شروع میں ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جہاز عراقی تیل لے کر جا رہا ہے۔ جہاز پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور اس میں 20 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل لے جانے کی کشمتا ہے۔ امریکی نیائے وبھاگ کے پروکتا نے اس بارے میں کوئی بھی ٹپنی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کے نئے راشٹرپتی نے پرمانو سمجھوتے میں واپس لوٹنے کے سنکیت دیے ہیں، جس سے 2018 میں ٹرمپ نے نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ حالانکہ بائیڈن کے ودیش منتری نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ ایک لمبی پرکریا ہے۔
کسان سنگھوں کے سنگٹھن سنیکت کسان مورچہ نے ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہنسا میں شامل لوگوں سے منگلوار کو خود کو الگ کر لیا اور آروپ لگایا کہ کچھ اسماجک تتوں نے گھسپیٹ کر لی ہے، انیتا آندولن شانتی پورن تھا۔ سنگھ نے اوانچت اور اسویکاریہ گھٹناؤں کی نندا کی ہے اور کھیت جتایا ہے کہ کچھ کسان سموہ دوارا پہلے سے طے راستہ بدلنے کے بعد پریڈ ہنسک ہو گئی ہے۔ سنیکت کسان مورچہ میں کسانوں کے 41 سنگھ ہیں۔ وہ دلی کی کئی سیماؤں پر کیندر سرکار کے 3 کرشی قانونوں کے خلاف ہو رہے پردرشن کی اگوائی کر رہا ہے۔ کسان سنگٹھن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اوانچنیہ اور اسویکاریہ گھٹناؤں کی نندا کرتے اور کھیت بھی جتاتے ہیں اور ایسے کرتیوں میں شامل لوگوں سے خود کو الگ کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے سبھی پریاسوں کے باوجود کچھ سنگٹھنوں اور ویکتیوں نے مارگ کا الگھن کیا اور نندنیہ کرتیوں میں شامل ہوئے اور سماجک تتوں نے گھسپیٹ کی ہے، انیتھا آندولن شانتی پورن تھا۔ ہم نے ہمیشہ یہ مانا ہے کہ شانتی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور کسی بھی طرح کا الگھن آندولن کو نقصان پہنچائے گا۔
بھارت میں گڑتن دیوس کے دن ٹریکٹر پریڈ کے دوران لال قلعے کی پراچیر پر نشان صاحب کا جھنڈا پھہرانے والا ویکتی ابھینیتا دیپک سدھو بھاجپا کے نیتا سنی دیول کا نکٹ ورتی ساتھی نکلا۔ کسان نیتاؤں نے دیپک سدھو پر ہنسا بھڑکانے اور آندولن کا رخ موڑنے کا آروپ لگایا ہے۔ दीपक सिद्धू अभिनेता सनी देओल के सहयोगी हैं। जब अभिनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था तो उस समय सनी देओल के चुनाव प्रचार में सिद्धू भाजपा के साथ थे। दीप सिद्धू ने की सनी देओल और पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी वायरल हुई है। अभिनेता दीप सिद्धू का कहना है कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लहराया था। दीप सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ये दावा किया है कि वो कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था और उन्हें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है।
यमन की सल्वेशन सरकार के वरिष्ठ वार्ताकार का कहना है कि यमन युद्ध और देश के परिवर्तन के समाप्ति की शर्त के साथ ही सऊदी अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने ट्वीट किया कि जिन लोगों ने यमन का घेराव कर रखा है और लोगों का जनसंहार कर रहे हैं, उन्हें बरसते गोलों में कूटनयिक वार्ता का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे कुतेसे का इंतजार करना चाहिए। अभी ये पता नहीं चल सका है कि यमन के वरिष्ठ अधिकारी ने ये ट्वीट किस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए किया है। कुछ लोगों का दावा है कि उनका ये ट्वीट सऊदी अरब की राजधानी पर हुए हालिया हमले की सांकेतिक स्वीकारोक्ति की वजह से है। एक सप्ताह के दौरान सऊदी अरब की राजधानी रियाज पर 2 हमले हो चुके हैं, जबकि यमनी सरकार ने इन हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है।
यमन की सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ने अमेरिका से सऊदी गठबंधन का समर्थन समाप्त करने की मांग की है। मोहम्मद अली अल हुसी ने यमन के विरुद्ध सऊदी गठबंधन के अपराधों की ओर संकेत किया। उन्होंने सऊदी गठबंधन का सामरिक समर्थन बंद करने की मांग की। मोहम्मद अल हुसी ने ट्वीट किया कि अमेरिका सऊदी अरब और उसके गठबंधन को हथियार बेचने, हवाई परिवहन और उनकी सामरिक सहायता बंद करने का बयान जारी कर सकता है। बेहतर है कि इस बारे में 26 फरवरी का फैसला कर लिया जाए।
इराकी स्वयंसेवी बलों ने एक बार फिर दाइश के हमले को विफल बना दिया। इराकी स्वयंसेवी बल हश्दुशाबी ने ईरान से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र तथा पूर्वोत्तरी प्रांत दियाला के तेल से मालामाल क्षेत्र पर दाइश के हमले को विफल बना दिया। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी गुट दाइश के आतंकियों ने दियाला प्रांत के नफ्तखाना नामक क्षेत्र पर हमले की कोशिश की, जिससे इराकी स्वयंसेवी बल के जवानों ने समय रहते विफल बना दिया। साबरीन न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर खबर दी है कि इराकी स्वयंसेवी बल हश्दुशाबी की एक ब्रिगेड ने दियाला प्रांत के नफ्तखाना क्षेत्र पर दाइश के एक भीषण हमले को नाकाम बना दिया।
अमरीका के रक्षा मंत्री का कहना है कि इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों की संख्या कम करने के फैसले की समीक्षा की जा रही है। ये फैसला ट्रंप प्रशासन ने किया था। फार्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी रक्षा मंत्री का कहना है कि इराक और अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी सैनिकों की संख्या कम करने पर पुनर्विचार हम कर रहे हैं। अमरीकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए कहा कि इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों की संख्या में कम करने का हर फैसला सरकार से विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा।
ज़ायनी सैनिकों ने गजा पट्टी में निर्माणाधीन एक मस्जिद को तोड़ दिया। अनातोली समाचार एजेंसी के अनुसार ज़ायनी सैनिकों ने बुधवार को अल खलील की यता कॉलोनी के उम्मे कोसा क्षेत्र में बनाई जा रही एक मस्जिद को तोड़ दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ज़ायनी सैनिकों ने इसी प्रकार से इस निर्माणाधीन मस्जिद के निकट मौजूद उस कुएं को भी तोड़ डाला जहां से निकट के स्कूल के लिए पानी की आपूर्ति होती थी। और इसी के साथ रेडियो तेरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली कुम्मी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राजनीतिक चर्चा। चर्चा के विषय हैं ईरानी विदेश मंत्री का आर्मेनिया का दौरा, ईरान की ज़ायोनी शासन के प्रतिनिधि की ओर से धमकी सहित हर तरह के खतरे से अपनी रक्षा के कानूनी अधिकार पर ताकीद, ट्रंप को दोबारा इम्पीच करने के लिए डेमोक्रेट्स के सामने कठिन रास्ता और किसान आंदोलन। चर्चा में पहले ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के आर्मेनिया के दौरे पर पेश है ईरवान से IRIB के लिए जॉर्ज इब्राहिमी की रिपोर्ट, साथी अहमद अब्बास की जबानी।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ बाकू में अजरबैजान गणराज्य के अधिकारियों और मॉस्को में रूस के अधिकारियों से बातचीत के बाद आर्मेनिया की राजधानी ईरवान पहुंचे हैं, जहां वो इस देश के अधिकारियों से मिल रहे हैं।
अरमानिस्तान एक हमसाये व दोस्त कदीमी।
जवाद जरीफ का कहना था कि आर्मेनिया इस्लामी गणतंत्र ईरान का पड़ोसी व दोस्त देश है। इससे पहले बाकू और मॉस्को में अपने पड़ाव के दौरान बहुपक्षीय सहयोग के बारे में, खासतौर पर 11 जनवरी को मॉस्को में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में श्री पाशिनियान, श्री अलियोफ और श्री पुतिन के साथ मेरी बातचीत हुई। क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग का रास्ता साफ है, खासतौर पर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग का रास्ता साफ है और इस सहयोग से दीर्घकालिक शांति और स्थिरता आ सकती है, यानी एक अच्छा अवसर है।
زمینه برای همکاری بین کشورهای منطقه فراهم، مخصوصا در حوزه اقتصادی.
جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ایروان میں شری پاشینیان اور اپنے سمکش سے جو ملاقاتیں ہوں گی، ایران آرمینیا کے بیچ دیپکشیے سمبندھوں اور کھیتر میں بہوپکشیے سہیوگ کے بارے میں اس میں چرچا کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیتریے سہیوگ کو بڑھا کر شانتی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है, जो हर क्षेत्र में विकास के लिए बुनियादी जरूरत और बुनियादी शर्त समझी जाती है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में पड़ोसी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक सहयोग को बढ़ाना शामिल है। इस आधार पर मोहम्मद जवाद जरीफ का क्षेत्रीय दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस दौरे से ईरान के पड़ोसी देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा द्विपक्षीय संबंधों का दायरा बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है। ईरवान से IRIB के लिए जॉर्ज इब्राहिमी की रिपोर्ट।
ईरान की ज़ायोनी शासन के प्रतिनिधि की ओर से धमकी सहित हर तरह के खतरे से अपनी रक्षा के कानूनी अधिकार पर ताकीद पर पेश है एक रिपोर्ट, साथी कायम रिजवी की जबानी।
राजसंघ में ईरान के स्थायी दूत ने धोखा और खुद को पीड़ित दर्शाना इसराइल की विदेश नीति का मुख्य तत्व बताया। उन्होंने बल दिया कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के पास फिलिस्तीन पर काबिज इस शासन की ओर से खतरे से अपनी रक्षा का अधिकार सुरक्षित है। इरना के अनुसार मजीद तख रवानची ने फिलिस्तीन के बारे में राष्ट्रसंघ परिषद की ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर काबिज ज़ायोनी शासन ने पिछले 5 वर्षों के दौरान सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव क्रमांक 2231 का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इस प्रकार वो समझौते को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी और खुद को पीड़ित दर्शाना इसराइल की विदेश नीति का मूल तत्व है। मजीद तख्त रवानची ने कहा कि ईरान के पास काबिज ज़ायोनी शासन के प्रतिनिधि की ओर से धमकी सहित हर तरह के खतरे से अपनी रक्षा का कानूनी अधिकार है। उन्होंने ज़ायोनी प्रतिनिधि की धमकी को UN के घोषणा पत्र का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्लामी गणतंत्र ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने बल दिया कि ऐसी हालत में दुनिया के सबसे लंबे संकट अर्थात फिलिस्तीन संकट संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से ही जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे में शामिल रहा है। पिछले 75 वर्षों के दौरान ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कराने में नाकाम रही हैं। लाखों पीड़ित फिलिस्तीनियों के समर्थन में कोई प्रभावी कदम उन्होंने नहीं उठाया और फिलिस्तीन पर काबिज अवैध शासन, फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा जारी रखते हुए फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ हर किस्म के बर्बरतापूर्ण अपराध करता रहा है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन अपराधों को रोकने में नाकाम रहा है। मजीद तख्त रवानची ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद की रक्षात्मक मुद्रा, वो भी ऐसी हालत में कि जब वैश्विक शांति व सुरक्षा उसके कर्तव्य में शामिल है, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की दुनिया भर में प्रतिष्ठा गिरने का कारण बनी है। انہوں نے کہا کہ انتراشٹریہ سنستھاؤں کا یہ رکشاتمک رویہ ہمیشہ ایسا نہیں رہ پایا بلکہ اسے اپنا رویہ بدلنا ہی ہوگا۔ سنیکت راشٹر سنگھ میں ایرانی استھائی پرتندھی نے انتراشٹریہ سمودائے سے مانگ کی ہے کہ وہ فلسطین کے مدعے پر دھیان دے کر اسے اور خطرناک ہونے سے بچائے تتھا کھیتری و انتراشٹریہ استر پر شانتی قائم رکھنے اور اس کی رکشا کے لیے پربھاوی قدم اٹھائیں۔ مجید تخت روانچی نے ایک بار پھر فلسطین کے مدعے اور فلسطین کے بھوش کے نردھارن تتھا بیت المقدس کی راجدھانی والے ایک سوتنت فلسطینی دیش کی استھاپنا سہت فلسطینی آکانکشاؤں کے پرتی اسلامی گڑتنت ایران کا بھرپور سمرتھن جاری رہنے کا اعلان کیا۔
ٹرمپ کو دوبارہ امپیچ کرنے کے لیے ڈیموکریٹس کے سامنے کٹھن راستے پر پیش ہے نیو یارک سے آئی آر آئی بی کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ، جسے پیش کر رہے ساتھی اختر عباس۔
ٹرمپ مار ا لاگو میں گولف کی فیلڈ میں اپنے سمرتھکوں کے بیچ ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس انہیں امریکہ کے خلاف ودروہ کے الزام میں امپیچ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ راشٹرپتی پد کے لیے دوبارہ امیدوار نہ بن سکیں۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کانگریس کی عمارت پر قبضے کی گھٹنا میں ٹرمپ کا ہاتھ نہیں تھا۔
If we are about to try to impeach a president,
دوسرے اگر ایسا ہوگا تو ہم بھی پچھلے ڈیموکریٹ راشٹرپتیوں کو امپیچ کریں گے۔ جو بائیڈن ٹرمپ کو امپیچ کرانا چاہتے ہیں لیکن سینٹ کی بیٹھک سے ان کی مرضی کا نتیجہ نکلنے کی امید نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے دو تہائی رائے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ کی بیٹھک کے ادھیکش پیٹرک لیہی جو ڈیموکریٹ سینٹر رہ چکے ہیں 9 فروری کو ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ پرکریا شروع کریں گے۔ وہ فلموں میں کئی بار اس طرح کی ایکٹنگ کر چکے ہیں۔
یو ریمائنڈ می آف مائی فادر، آئی ہیٹڈ مائی فادر۔
البتہ کل رات ان کی طبیعت بگڑ گئی، لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب جبکہ یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ریپبلکنز سمرتھن نہیں کریں گے، ڈیموکریٹس کے سامنے ٹرمپ کو امپیچ کرنے کا راستہ کٹھن ہے۔ جج، ملزم اور عدالت ایک دوسرے سے زیادہ ویوادت ہیں۔ نیو یارک سے آئی آر آئی بی کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ۔
اور اب بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ دلی کی سیماؤں پر کسانوں کا آندولن جاری ہے۔ کسانوں کی 1 فروری کو سنسد بھون تک مارچ کی یوجنا ہے۔ کسان نیتا راکیش ٹکیت کا الزام، سازش کے تحت کسانوں کی 26 جنوری کی شانتی پورن ریلی میں ہنسا پھیلائی گئی، مانگ پوری ہونے تک آندولن جاری رہے گا۔ ادھر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں ہنسا کے بعد دلی کی کئی سڑکیں ٹریفک کے لیے آج بند کی گئیں۔ پیش ہے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
وادت کرشی قانونوں کے خلاف راشٹریہ راجدھانی نئی دلی میں کل کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران ہنسا کی گھٹنائیں ہونے کے بعد، جس میں ایک ویکتی ہتاہت ہو گیا، دلی کے انیک مارگوں کو آج ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور سرکشا بلوں کی ادھک ٹکڑیاں دلی کے سمویدنشیل کھیتروں میں تعینات کر دی گئیں۔ دلی اور اس کے آس پاس کے کھیتروں میں انٹرنیٹ سیوائیں روک دی گئیں، جس کے کارن مہاماری کے دوران گھر سے کام کرنے والوں اور چھاتروں کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کی آن لائن ککشائیں پربھاوت ہوئیں۔ 26 جنوری کو گنتنتر دیوس کے افسر پر کسان ٹریکٹر ریلی کے دوران کچھ کسانوں کے نردھارت مارگ سے ہٹ کر لال قلعے میں گھسنے اور دوسرے استھانوں پر کسان دوارا بیریکیڈ توڑنے کے بعد پولیس اور کسانوں کے بیچ جھڑپ ہوئی، جس کے دوران کسانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے لگ بھگ 300 جوان گھائل ہوئے ہیں۔ دلی پولیس کے سہ آیوکت آلوک کمار نے بتایا کہ کسانوں نے نردھارت سمے سے پہلے ریلی نکالی اور اگر ہو کر بیریکیڈ توڑ دیا۔ ہنسک بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا اور آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے۔ انہوں نے کہا کہ دوشیوں کو سزا دی جائے گی۔
اگر طریقے سے یہ ڈیمونسٹریشن کیا گیا، ریلی کی گئی، جس میں ویاپک پیمانے پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 22 प्राथमिकी दर्ज की है। लाल किले के अंदर घुसकर एक पोल पर चढ़कर अपना झंडा लहराने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच करेगी। कल पुलिस और किसानों के बीच झड़प में कई बसों और निजी वाहनों को भी क्षति पहुंची। कई किसानों के भी घायल होने के समाचार हैं। उधर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है और अगले कदम के रूप में किसानों की 1 फरवरी को संसद भवन तक मार्च करने की योजना है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सब नहीं, कुछ किसान नेता संसद जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। टिकैत ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत किसानों की शांतिपूर्ण रैली में हिंसा फैलाई गई और एक कौम को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सभी किसानों का है और जब तक मांग पूरी नहीं होती ये आंदोलन जारी रहेगा।
एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि हम किसान हैं और हिंसा से मेरा कोई लेना देना नहीं है और जिन्होंने हिंसा फैलाई है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अब पेश है प्रोग्राम शौर्य गाथा, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का आखिरी प्रोग्राम आज कल।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहर दादी और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कड़ी में करबला 4 नामी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ईरान की तैयारी के बारे में बताएंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम शौर्य गाथा में 80 के दशक में ईरान पर इराक की बासी सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में फाओ प्रादीप में बलफज्र 8 सैन ऑपरेशन के बाद 1986 में राजनैतिक परिस्थितियों, मैदान जंग के हालात, करबला 1 ऑपरेशन और मेहरान शहर के आजाद होने के बारे में बताया। इन सफलताओं से बौखलाए इराक के बासी शासन ने पूरब और पश्चिम की दो बड़ी ताकतों और उनके पिट्ठुओं की माली, सैन्य, राजनीतिक व गुप्तचर मदद से इस्लामी गणतंत्र ईरान की व्यवस्था और सैन्य आधार को कमजोर करने के लिए तेल टैंकर, आर्थिक व सैन्य केंद्र शहरों और गांवों को निशाना बनाया। तेल टैंकरों और तेल के टर्मिनल व जेटियों पर बढ़ते हमलों से एक ओर ईरान का तेल निर्यात कम हो गया था तो दूसरी ओर सऊदी अरब ने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया था, जिससे तेल की कीमत गिरकर प्रति बैरल $7 तक पहुंच गई थी। वक्त ईरान के खिलाफ था। ऐसे हालात में जंग का लंबा खींचना इराक पर ईरान की जंग में बढ़त पर सीधा असर डालता। ईरान ने यह बढ़त जंग के दूसरे साल में हासिल की थी। इसी वजह से ईरान में सैन्य व प्रशासनिक अधिकारियों ने 1986 के जंग के भविष्य को तय करने वाला साल कहा।
तत्कालीन संसद सभापति हुज्जतुल इस्लाम हाशमी रफसंजानी ने 5 जून 1986 को IRGC के कमांडरों व अधिकारियों की बैठक में कहा था, हमारी नज़र में इस वक्त जंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं है। वक्त को हाथ से जाने न दें। आज वक्त हमारे हित में है, इसे हाथ से न जाने दें। देश के हालात और आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र हमें इस मामले को जल्द से जल्द किसी बिंदु तक पहुंचाना होगा। इस आधार पर IRGC ने दक्षिणी मोर्चे के सभी इलाकों में ऑपरेशन के लिए योजना बनाई ताकि तीन तरफ से निर्णायक हमला हो और दक्षिणी इराक व बसरा का मामला खत्म हो जाए। इस योजना के लिए 500 बटालियनों का जंग के मैदान में उतारना था। देश के अधिकारियों की नज़र में इतनी बड़ी तादाद में फौजियों और सैन्य साजो सामान की तैयारी मुमकिन नहीं थी।
IRGC के तत्कालीन प्रमुख मोहसिन रजाई करबला 4 ऑपरेशन के बारे में कहते हैं,
عملیات کربلا 4 کی ما صبح دیگه مطمئن شدیم کجاها باز و کجاها بسته است۔
کربلا 4 ऑपरेशन के दौरान सुबह के वक्त हमें समझ में आ गया कि किस जगह का रास्ता खुला और किस जगह का बंद है, इसलिए हमने उसे रोक दिया۔ محسن رضایی آگے کہتے ہیں،
خدای متعال به ذهن ما انداخت که الان موقع خوبیه که این تلاشی که ناکام شده همین رو تبدیل به فریب بکنیم، نه اینکه از اول تو ذهن ما این بود که کربلای 4 فریب بشه۔
ईश्वर ने हम लोगों के मन में ये विचार डाला कि ये अच्छा मौका है कि इस कोशिश को जो नाकाम हो गई है धोखे में बदल दें। ये बात हम लोगों के मन में पहले से नहीं थी कि करबला 4 ऑपरेशन को धोखे में बदल दें।
तय ये पाया था कि 500 बटालियनों पर आधारित सैन्य ऑपरेशन की योजना तैयार की जाए। IRGC इस बिंदु पर बारंबार बल देता था कि इस अहम हमले को अंतिम हमला नहीं समझना चाहिए। ईरान को उम्मीद थी कि अपने निर्णायक हमले से जंग को ऐसे मोड़ पर पहुंचा देगा कि सद्दाम और उसके समर्थकों की आशा धूमिल हो जाएगी, ईरान की जायज मांग मान ली जाएगी और जंग का रुख अनुकूल हो जाएगा। इस बारे में अधिकारियों का कहना था, अलग अलग विचारों का मतलब ये नहीं है कि इस साल जंग खत्म हो जाएगी, बल्कि हमारे पास जंग को ऐसे मोड़ पर ले जाने की योजना है कि जिससे ईरान की जीत निश्चित हो जाएगी। इस जीत की एक निशानी सद्दाम के समर्थकों की ओर से उसका समर्थन खत्म हो जाना है। देश के अधिकारियों की सारी कोशिश इस निर्णायक सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जरूरी रंगरूट की भर्ती पर केंद्रित हो गई थी। दूसरी ओर लड़ाई के मोर्चे पर ईरानी वीरों की कामयाबी और लेबनान में अमेरिका व ब्रिटेन के नागरिकों के अपहरण की वजह से ये दोनों देश कभी ईरान की ओर रुझान दिखाते तो कभी ईरान के खिलाफ कदम उठाते थे। जंग को ख़त्म करने के लिए विदेश नीति को जारी रखने के साथ साथ जंग के मोर्चे पर सफल ऑपरेशन को अंजाम देना और हर हाल में ज़रूरी समझा गया था। जंग के किसी भी ऑपरेशन की योजना और उसे लागू करने के लिए स्वयंसेवियों की भागीदारी ज़रूरी थी। स्वयंसेवी फोर्स बसीजे मुस्तज़फीन ने 26 नवंबर 1986 तक, जो इस संगठन की स्थापना की वर्षगांठ थी, 1,00,000 रंगरूटों की भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया था। लोगों को जंग पर जाने के लिए प्रेरित करने हेतु बसीज के 21,000 केंद्रों को इतनी तादाद में रंगूटों को भर्ती करने के लिए जनसंपर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसी साल पूरे ईरान में स्वयंसेवी बल बसीज के 21,000 केंद्र बनाए गए थे।
करबला 4 सैन्य ऑपरेशन के दौरान एक वीर जवान कहता है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं।
देश में रंगरूट की भर्ती की कोशिश के बावजूद निर्णायक ऑपरेशन के लिए 300 बटालियनें बन सकीं, जिसमें 250 बटालियनों को लड़ने के लिए तैयार किया गया। उस वक्त IRGC की इकाइयां मजनू द्वीप समूह और शलमचे सहित कई अहम बिंदुओं में टोही गतिविधियां कर रही थीं ताकि वहां से बासी सेना के खिलाफ संभावित हमले की समीक्षा हो सके। टोही गतिविधियों और विचार विमर्श के बाद उत्तरी शलमचे में पंचभुजीय इलाके से लेकर मीनू द्वीप के दक्षिणी छोर पर 4 किलोमीटर तक के इलाकों को आम ऑपरेशन के लिए चुना गया, जिसमें 2 एक्सिस थे, एक शलमचे और दूसरा अबुल खसीम। इस ऑपरेशन का लक्ष्य बसरा था। सैन्य नजर से करबला 4 का रणक्षेत्र दक्षिणी भाग में आखिरी जंग की कोशिश थी। इस इलाके को इसकी रणनीतिक अहमियत की वजह से चुना गया, क्योंकि ये इलाका ईरान के सैन्य लक्ष्य और उसकी सैन्य ताकत के अनुकूल था। करबला 4 सैन्य ऑपरेशन की तैयारी, अबुल खसीब इलाके पर नियंत्रण करने, फाओ प्रायद्वीप में तैनात फोर्सेस को चारों ओर से घेरने और बसरा के लिए दक्षिण से खतरा पैदा करने के लिए की गई। इस ऑपरेशन का लक्ष्य फाओ प्रायद्वीप को, जिस पर ईरान का नियंत्रण था, दक्षिणी बसरा से जोड़ना और पूरी अरवंद नदी को ईरानी फोर्सेस के नियंत्रण में लाना था। यह ऑपरेशन फाओ प्रायद्वीप में अंजाम पा चुके वलफज्र 8 ऑपरेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए था, ताकि इस तरह पूरा फाओ इलाका आज़ाद हो जाए तथा फारस की खाड़ी में ईरान की स्थिति पहले से बेहतर हो जाए। करबला 4 ऑपरेशन के अंजाम पाने से फाओ के सरेपुल इलाके पर बासी सेना के फिर से कब्जे का खतरा खत्म हो जाता।
इस इलाके के पुराने रिकॉर्ड के मद्देनजर सैन्य ऑपरेशन के लिए विशेष टैक्टिक अपनाई गई। असल में यह टैक्टिक ऑपरेशन की कामयाबी की कुंजी और दुश्मन को हमले की मुख्य दिशा की भनक न लगने का मुख्य तत्व समझी जाती थी। इराक की बासी सेना ईरानी वीरों के हमले की स्थिति में व्यवहारिक रूप से रक्षात्मक मुद्रा में होती, क्योंकि उसे मुख्य लक्ष्य को समझने में मुश्किल होती और वो शक में पड़ जाती। एक ओर हमले की दिशा अबुल खसीब और बसरा थी, तो दूसरी ओर इराक की 7वीं डिवीज़न का रास्ता पीछे से बंद कर देती। इस योजना में अरवंद नदी के आसपास के खजूर के बाग को सैन्य ऑपरेशन का केंद्र माना गया था। इस निर्णायक सैन्य ऑपरेशन की योजना विशेष टैक्टिक के साथ दुश्मन को भनक न लगने की उम्मीद के साथ तैयार की गई। सभी संसाधन, आम माहौल और प्रचार लोगों को यह समझाने पर केंद्रित थे कि निर्णायक ऑपरेशन करबला 4 जंग को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होता है। इस बारे में अगले प्रोग्राम में बताएंगे, सुनना न भूलिएगा। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम कोरोना के कारण यूरोप व अमेरिका में पैदा होने वाले आर्थिक व सामाजिक संकट पर चर्चा करेंगे।
कोरोना वायरस के फैलाव ने अमरीकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। اور اس دیش میں بڑی سنکھیا میں کام کاج کے افسر ختم ہو گئے ہیں، جس کے بعد امریکہ ابھوتپورو آرتھک سنکٹ میں گرست ہو گیا ہے۔ انیک آرتھک وشیشگیوں کا کہنا ہے کہ یہ سنکٹ سن 1930 میں امریکہ میں آنے والے آرتھک سنکٹ سے بھی زیادہ جٹل ہے۔ آرتھک پہلو سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ اس سمے اپنے اتہاس کے سب سے بڑے آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہا ہے۔ اس دیش میں بے روزگاری، کام کاج کے کیندروں کے بند ہونے، کمپنیوں و کارخانوں کے کام میں کمی اور آرتھک گھاٹے کے آنکڑے ابھوتپورو ہیں۔ امریکی نیوز چینلوں نے بھی آرتھک مندی کو لے کر آئے دن بحث ہوتی رہتی ہے۔
The Labor Department is out with jaw-dropping new numbers.
Unemployment claims skyrocketing with 6.6 million people filing in the last week alone.
It's still 1.5 million. It's still an enormous number.
سچائی یہ ہے کہ اس سمے امریکہ جس آرتھک گراوٹ سے جوجھ رہا ہے وہ دوسرے وشو یدھ کے بعد امریکی اتہاس کی سب سے بری آرتھک گراوٹ ہے۔ وشو بینک نے دسمبر 2020 کے انت میں اپنی ایک رپورٹ میں بھوشیہ وانی کی کہ اس سال امریکہ کا آرتھک وکاس -6.1 رہے گا۔ اس پرکار کا بڑا نکاراتمک آرتھک وکاس امریکہ میں ورش 1946 میں دیکھنے میں آیا تھا، جب اس دیش کا آرتھک وکاس -11.6 تک پہنچ گیا تھا۔ امریکہ میں جاری آرتھک مندی کا اندازہ اس مہیلا کے آنسوؤں میں لگایا جا سکتا ہے جو کورونا مہاماری کے کارن آرتھک استھتی سے جوجھ رہی ہے۔
You know, I lost my job and when I went with that, I lost everything else. No money, no nothing. I don't sleep well. I stay worried about stuff all the time.
اسی طرح امریکہ کے میڈیا نے دسمبر 2020 میں دنیا کی سب سے بڑی ارتھ ویوستھا مانے جانے والے اس دیش میں پچھلے مہینوں کے دوران بے روزگار ہونے والوں کی سنکھیا 4 کروڑ بتائی تھی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور ٹرمپ سرکار کی بری ویوستھا و سنچالن کے کارن اس دیش کی جٹل آرتھک استھتی کے مد نظر ایسا لگتا ہے کہ یہ سنکھیا اس سمے پچھلے کچھ مہینوں سے کافی ادھک ہو چکی ہے۔
سن 2020 میں امریکہ کی راشٹریہ کرنسی یعنی ڈالر کے مولے میں بھی کافی کمی آئی اور اس کی وجہ کورونا کے کارن امریکی ارتھ ویوستھا کو پہنچنے والی بھاری کشتی تھی۔ دنیا کی وشوست کرنسیوں کی تلنا میں 2020 میں ڈالر کے مولے میں لگ بھگ 6% کی کمی آئی۔ اس طرح یہ سال پچھلے ایک دشک میں ڈالر کے لیے سب سے برا سال رہا۔ ورشٹھ مدرا وشیشج فلپ وی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ڈالر پر COVID-19 کا اثر جاری رہے گا۔
Been slow to capitalize on the weak dollar. We should be seeing a flaw for most of the dollar Asian currencies as well.
امریکہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سمے سے ہی اس دیش میں غریبوں اور بے گھر ہونے والوں کی سنکھیا میں بہت ادھک بڑھوتری ہوئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے دسمبر 2020 میں نئی جڑگڑنا اور وبھن ادھیانوں کے آدھار پر رپورٹ دی تھی کہ ضرورت مند لوگوں کو کورونا کے دوران دیے جانے والے آرتھک پیکیج کو بند کرنے کے بعد پچھلے 6 مہینے میں امریکہ میں دریدرتا کی در بڑھ گئی اور جون سے نومبر 2020 تک امریکہ کے لگ بھگ 78 لاکھ لوگ غریبوں کی شرینی میں آ گئے ہیں۔
امریکہ کے ویاپار منترالے نے دسمبر 2020 کے تیسرے ہفتے میں بتایا کہ اس دیش میں نومبر میں خودرا ویاپار میں 1.1% کی کمی آئی ہے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے چلتے امریکی پریواروں کی آئے بھی کم ہو گئی ہے۔ خودرا بکری اور امریکی پریواروں کی آئے میں کمی سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی ارتھ ویوستھا میں بہتری کی رفتار اب بھی بہت دھیمی ہے۔
امریکہ کے ایک سینیٹر برنی سینڈرز نے اس سمبندھ میں ایک ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ امریکی ارتھ ویوستھا بھرشٹ ہے۔ دیش میں جیسے جیسے بہو سنکھیکوں کی غریبی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے الپ مت دھنوانوں کی استھتی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے جن کے پاس پریاپت بھوجن کا سادھن نہیں ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے ایک ویڈیو سندیش میں بھی انہی چیزوں کی اور اشارہ کیا ہے۔
This current horrific crisis that we are now in has exposed for all to see. The current economic downturn we are experiencing has not only led to a massive loss of jobs, but has also resulted in millions of Americans losing their health insurance.
अमरीकी जनगणना कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अमरीका के 2,60,00,000 लोग पर्याप्त भोजन से वंचित हैं और इस मामले में अश्वेत परिवारों की संख्या श्वेत परिवारों से 2.5 गुना ज्यादा है. बच्चे वाले हर छठे अमरीकी परिवार के पास पर्याप्त भोजन का साधन नहीं है और उन लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो अपने परिवार के लिए खाने की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं.
अमरीकी प्रतिनिधि सभा में सूचना समिति के प्रमुख एडम शेफ ने एक ट्वीट करके 2020 में मुफ्त खाने का आवेदन करने वालों की संख्या में वृद्धि की सूचना दी और सेनेट में बहुसंख्यक दल के नेता मिच मैककेनल द्वारा इन लोगों की सहायता न किए जाने की आलोचना की. एडम शेफ ने एक टीवी डिबेट में भी इस ओर इशारा किया है.
We wanted larger checks all along. We wanted a larger package all along. We recognize the immense need in the country. People are lining up in food lines miles long.
उन्होंने कहा कि इस साल थैंक्स गिविंग डे में हजारों अमरीकी खाना देने के केंद्रों पर घंटों लाइन में लगे रहे. एक वेबसाइट के अनुसार मार्च से अक्टूबर 2020 तक भोजन वितरित करने वाले केंद्रों ने 4.2 अरब खाने लोगों के बीच बांटे.
यूरोप महाद्वीप को भी सन 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा. कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद, जिसे ब्रिटिश कोरोना भी कहा जा रहा है और जिसके फैलने की रफ्तार कोरोना वायरस से 9 गुना अधिक है, इस बात की आशंका है कि वर्तमान बुरी स्थिति आगे भी जारी रहेगी. हालांकि यूरोपीय संघ को सदस्य देशों के बीच कोरोना वैक्सीन के सार्वजनिक वितरण के बाद आशा है कि वर्ष 2021 में वो इस वायरस को नियंत्रित कर लेगा. ये संघ कोरोना वैक्सीन के 2 अरब डोज खरीद कर अगले साल तक बड़ी उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने का इरादा रखता है. यूरोप के 5 देशों ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन और रूस में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोप में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से मरने वालों की संख्या 5,00,000 से अधिक है. फ्रांस के वित्त मंत्री ली मेयर ने कहा कि कोरोना महामारी से यूरोप में पैदा हुए आर्थिक संकट से एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.
Je voudrais simplement dire une évidence.
यूरोप में कोरोना महामारी का फैलाव इस बात का कारण बना है कि यूरोपीय संघ में पाई जाने वाली कमजोरियां और गहरी दरारें पहले से अधिक स्पष्ट हो जाएं. इस संघ के अधिकारी कोरोना वायरस के कारण पैदा होने वाली समस्याओं के महत्व से अच्छी तरह अवगत थे और वे इस बात की कोशिश कर रहे थे कि जैसे भी संभव हो इस अभूतपूर्व संकट का मुकाबला किया जाए. जर्मनी की चांसलर ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न होने वाले संकट को यूरोपीय संघ के अस्तित्व में आने के समय से लेकर अब तक इस संघ का सबसे बड़ा संकट बताया है.
Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg.
ये वो कड़वी सच्चाई है जो यूरोप में कोरोना फैलने के बाद इस महाद्वीप के अधिकतर लोगों के लिए स्पष्ट हुई. यही वजह थी कि एक संयुक्त संस्था यानी यूरोपीय संघ के अस्तित्व के बावजूद यूरोपीय देशों में हर कोई अपने अलग ही रास्ते पर चलने लगा और किसी भी यूरोपीय देश ने कोरोना से मुकाबले के लिए संयुक्त कार्रवाइयों पर ध्यान नहीं दिया. कोरोना की महामारी का एक परिणाम यूरोपीय संघ की कमजोरियों का स्पष्ट होना था, विशेषकर अप्रत्याशित संकटों से निपटने में उसकी कमजोरी तो जग जाहिर हो गई. इससे पता चलता है कि गहरे व अप्रत्याशित संकटों में यूरोपीय संघ के कानून भी दम तोड़ जाते हैं. यूरोपीय संघ के आर्थिक मामलों के आयुक्त पाओलो जेटोलिनी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कोविड-19 महामारी ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका दिया है.
The pandemic has hit the European economy harder than previously expected, even if a cautious rebound is now beginning.
यूरोप में कोरोना का संकट जारी रहने और इसके सामने आने वाले आर्थिक व राजनीतिक कुपरिणामों, कारखानों का उत्पादन केंद्रों के बंद होने, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी में वृद्धि और आर्थिक संकट में वृद्धि पर बढ़ती चिंता ने यूरोपीय अधिकारियों के बीच दरार को पहले से अधिक स्पष्ट कर दिया है। आर्थिक विषय कोरोना संकट का मुख्य मुद्दा है। यूरोपीय देश अपने भविष्य की ओर से चिंतित हैं। ये संकट यूरोप में करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने का कारण बना है। जून में यूरोपीय संघ में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी या रोजगार खत्म हो गया।
इससे पहले ये सोचा जाता था कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से निकलना इस संघ का सबसे बड़ा संकट है, लेकिन कोरोना महामारी के अचानक फैलाव ने सभी समीकरणों को बिगाड़ दिया और यूरोपीय संघ को अनेक संकटों के रूबरू कर दिया, जिनमें से कुछ की जटिलता तो अभी समीक्षा योग्य भी नहीं है। उदाहरण स्वरूप 2020 की पहली 6 माह में यूरोप की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 90 अरब यूरो का नुकसान पहुंचाया है। जर्मन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश की अर्थव्यवस्था 2020 की दूसरी तिमाही में 10% छोटी हो गई है। यूरोप का पर्यटन उद्योग, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की जीडीपी का 10% भाग है और उनके रोजगार के अवसरों का 15% इस उद्योग से विशेष है, बहुत अधिक नुकसान उठा रहा है और इन देशों के रोजगार के कम से कम 7.5 करोड़ तबाही के मुहाने पर हैं। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir। वेबसाइट है हमारी parstoday.com/hi। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य लिख भेजिए। हमें आपके प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहती है। खुदा हाफिज़।